SBS हिंदी।
दोस्तों, SBS हिंदी पर अक्सर प्रयास ये रहता है कि आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो बहुत कम जानी होती हैं, बहुत कम मानी होती हैं। आज जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ या जो बताने जा रही हूँ, अगर आप अभी भी भारत जाने वाले हैं या फिर कुछ ही समय में भारत की यात्रा करने वाले हैं, तो इस जगह की मुलाकात आप ज़रूर लीजिएगा। ये है भारतीय संसद की प्रतिकृति। जी हाँ, तो अगर आपको भारतीय संसद भवन को नज़दीक से देखना हो तो अब दिल्ली के बदले जाना होगा गुजरात। क्यों? क्योंकि गुजरात के कच्छ जिले के भुजोड़ी नाम के छोटे से गांव में भारतीय संसद की छोटी सी प्रतिकृति नहीं, लेकिन उसी साइज़ की प्रतिकृति बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है वंदे मातरम मेमोरियल म्यूज़ियम। यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को संजोकर रखा गया है। इस मेमोरियल की विशेषता ये भी कही जाती है कि ये मेमोरियल भारत का प्रथम 4D टेक्नोलॉजी से सज्ज संग्रहालय है। जो इसकी विशेषता की बात करें तो ये जो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के भाग के रूप में बनाया गया है। आशापुरा ग्रुप्स ऑफ कंपनी के द्वारा ये निर्मित है। पिछले एक वर्ष में लाखों लोगों ने इस प्रतिकृति की, इस मेमोरियल म्यूज़ियम की मुलाकात ली है। तो चलिए जानते हैं क्या खास है इसके बारे में, और इसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं आशापुरा ग्रुप्स के चेयरमैन चेतन भाई शाह। चेतन जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
रीता जी, आपने मुझे आपके रेडियो चैनल के माध्यम से आपके श्रोता को मिलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
तो चेतन जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो भारतीय संसद की प्रतिकृति को तैयार करना, उसमें भारत के जो इतिहास है उसको संजोकर रखना, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा होगा जब आपने इसके बारे में सोचा होगा। तो बताइए कि इस तरह का कुछ निर्माण करने का विचार कहाँ से आया, या फिर यूँ कहूँ कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
ये आपका बहुत अहम सवाल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा हुआ है। हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास काफ़ी बुलंद है। विश्व के बहुत कम देशों ने अपने देश की आज़ादी के लिए इतना लंबा संघर्ष किया होगा। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलाने के लिए करीब करीब 100 साल का संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद हमको आज़ादी मिली। ये एक बहुत रोमांचक इतिहास है और मुझे बार बार लग रहा था कि ये इतिहास भुलाया जा रहा है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ ये बात करता था, तब मुझे पता चलता था कि उनको ये इतिहास के बारे में न तो कोई पूरी जानकारी है, ना उसमें कोई उनको दिलचस्पी है। ये बात को ध्यान में रख कर एक ऐसा सोचा कि हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास को अगर कोई ख़ास फॉर्म के अंदर में, एक म्यूज़ियम के माध्यम से अगर पेश कर दिया जाए तो ये इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। बस यही ख्याल के साथ में मैंने और मेरी टीम ने काम करना चालू किया। ये म्यूज़ियम बनाने से पहले करीब करीब 2 से 2.5 साल तक हमने उसका काफ़ी अध्ययन किया और उसमें से कुछ कुछ बातें जो थी उसको हमने चुन के उसको एपिसोड में बदलने के लिए प्रयास शुरू किया। और 100 साल का इतिहास है, बहुत सारी घटनाएं बनी हैं, लेकिन उसमें से कौन सी घटना चुनी जाए कि जो यहाँ पे म्यूज़ियम के माध्यम से उसको पेश कर सके। इतनी सारी घटनाएं तो एक जगह पे पेश करना आसान नहीं है। इसके लिए हमने उसका एक अच्छी तरह से बैठ के सोच के उसका चुनाव किया और फिर ये म्यूज़ियम बनाने की शुरुआत की।
चेतन जी, तो अब तक हमने जो बात की वो तो बात की कि ये जो इमारत है इस मेमोरियल की वो क्या है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो म्यूजियम यानी कि जो संग्रहालय है उसकी, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक साथ रखा गया है और ये कोशिश की गई है कि इतने अच्छी बेहतरीन तरीके से रखा जाए ताकि नई पीढ़ी भी इससे जुड़ सके, उन्हें भी ये बात पहुंचाई जा सके। तो ये बताइए कि क्या खासियत है इस संग्रहालय में, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर।
मैं अगर इस म्यूज़ियम के बारे में बोलूँ तो मुझे कुछ चंद घंटों का समय चाहिए, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में ये अगर म्यूज़ियम के बारे में बताऊँ तो 1608 में जब ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान में आए, वो सिर्फ आए थे एक बिजनेस के माध्यम से, उसको हिंदुस्तान के अंदर में अपना कारोबार करना था, अपना बिजनेस करना था, अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी थी। तो 1608 में ब्रिटिश लोग सूरत में आए, फिर उन्होंने वो टाइम के जो महाराजा थे जहांगीर के साथ पास जाके उन्होंने हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए, हिंदुस्तान में कारोबार करने के लिए उनसे इजाज़त मांगी, और फिर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में हावी हो गए। 1857 से पहले मंगल पांडे जैसे सिपाही ने ब्रिटिशों के सामने पहली बार विद्रोह करने के लिए अपना मन बना लिया, और फिर मंगल पांडे ने शुरुआत की, फिर वो तो बहादुर शाह जफर तक गए, बहादुर शाह जफर, फिर झांसी की रानी, और फिर उसके बाद में कुंवर सिंह, इस तरह से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने 1857 के जो पहला एक विद्रोह हुआ, विद्रोह वाकई में ही सफल नहीं हुआ लेकिन उन्होंने उसके लिए काफ़ी काम किया और वहाँ से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की नींव लगाई गई। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, गांधी, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए, उनको गोखले जैसे गुरु मिले, फिर एक बहुत बड़ा कांड जो जलियांवाला कांड हुआ, और उसके बाद में ये मूवमेंट जो फ्रीडम फाइटिंग की जो मूवमेंट थी, आज़ादी के लिए की मूवमेंट थी, वो बहुत काफ़ी तेज हो गई। फिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए संकल्प कर लिया, और उनके साथ साथ में वीर सावरकर जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे और कई लोग जुड़ते गए, और ये एक नया मंच तैयार हो गया। और फिर 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया की मूवमेंट्स ने इतना जोर पकड़ लिया, तब ब्रिटिश साम्राज्य को पता चल गया कि अभी हिंदुस्तान में उसको रहना काफ़ी मुश्किल है, और वही सिलसिले में हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी मिली, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम एट मिडनाइट एक बहुत रोमांचक अपनी एक स्पीच दी, और उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये पूरी बात हमने म्यूज़ियम में अच्छी तरह से 4D के माध्यम से कवर की है। ये म्यूज़ियम में कोई 300 से ज़्यादा मैनीक्विंस है। ये म्यूज़ियम में बहुत कुछ बनाया गया है, और एक ये देखने के लिए 1.5 घंटे का वक्त चाहिए, और एक आपको पूरी झलक मिल जाएगी कि हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास कितना रोमांचक था, उसकी पूरी झलक ये म्यूज़ियम के माध्यम से मिल जाएगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, आपने समय निकाला SBS हिंदी के लिए और हमसे इस विषय पर बात की।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।